آئیے سورہ کہف کا آخری حصہ، اسپیشلی یہ واقعہ جس میں علم کی ایک اور ہی شان ہم پڑھنے والے ہیں، پڑھ کے دیکھتے ہیں. آیت نمبر 75 سے 110 تک سورۃ کہف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال الم اقل لك انک لن تستطیع معی صبرا. کاموں کے پیچھے چھپی اللہ کی حکمت ہے. رکو نمبر 1. وہ کہنے لگے، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اب اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً میری طرف سے حد عذر کو آپ پہنچ چکے. پھر وہ دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس، آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمانداری سے صاف انکار کر دیا. دونوں نے وہاں ایک دیوار بنانا چاہی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے. اس نے کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جن پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا. کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے. ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا بچہ عنایت فرمائے. دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے. ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، اس کو ہائی لائٹ کریں، وکانا ابوہما صالحا. تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں. میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت اور ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. خود ہی بتا دیا، اور بلکہ اینڈ پہ تو خود ہی نکل گئے. ایک روایت لکھی ہے بخاری میں 102 حضرت عبید بن کعب سے، اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے، ہم چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان کے مزید حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے. تو کیا پتہ چلا قصہ موسیٰ اور خضر سے کچھ اسباق آپ کے میرے لیے. پہلی بات تو بڑی آبویس ہے کہ علم کی اہمیت، پھر علم کی رغبت، پھر طلب علم کے لیے صعوبتیں برداشت کرنا اور صبر کرنا. پھر اگلی بات ہے کہ سفر ہو کہ خضر ہو، یعنی حاضر موجود جیسے آپ سٹے ہوم ہوتے ہیں، اس میں شیطان کے شر سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے، اور غیب میں ہونے والے واقعات پر زیادہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے. اس قصے میں ایک اور چیز جو آپ کے میرے لیے، وکان ابو ہما صالحہ، آیت 82 میں یہ جملہ آیا تھا، نیک ماں باپ کی نیکی بچوں کو کیا فائدہ دیتی ہے. یعنی آپ یہ کورس کر کے مزید نیک ہو جائیں گی تو آپ کے بچوں کو اس سے کیا فائدہ ملے گا. پہلی بات ہے کہ اللہ ایسے ماں باپ کی اولادوں کی حفاظت کرتا ہے، پھر اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں، اولاد کے جنت میں درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور اولاد کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آپ میں سے کوئی اولاد کی پریشانیوں میں ہے نا، اپنے آپ کو نیکیوں میں ڈالیں اور اپنے بچوں کو کہا کریں کہ میں آپ کے لیے نیکی کر رہی ہوں تاکہ میری نیکی کی وجہ سے اللہ آپ کی یہ مشکل آسان کر دے. پھر اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جس کا تعلق تقدیر سے ہے. یہ پورا قصہ اپنے اندر خزانے رکھتا ہے. تو یاد رکھیں کہ علم کی خاص قسم تھی جو کہ ان کو دی گئی تھی. خضر علیہ السلام کو فرشتے تھے، اللہ انسانی روپ میں لے آیا. ورکرز جن کو کام کرنا، تو ان کو کئی چیزیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں. تو یہ غیب کے کچھ قصے تھے جس کے اندر سے آپ کے میرے لیے کچھ مورلز اینڈ لیسنز ہیں. پہلی بات، رضیت باللہ ربم، اللہ کی رضا میں راضی رہیے. بظاہر برے واقعات اصل میں آنے والے دن کی خوشخبری کی نوید ہوتے ہیں. پھر اس کا ایک پیغام ہے کہ انسان تقدیر سے لڑ نہیں سکتا، اور انسان کے بعض کاموں میں بظاہر خیر نہیں ہوتی لیکن آفٹر آل اس میں خیر ہے. آسان تکرہ شیئن وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگے لیکن اس میں خیر ہو، اور نقصان کو برا مت جانو، اللہ تعالیٰ بہتر جگہ سے عطا فرماتا ہے. आपके मेरे अमल के नुक्ते सब्र करना है, पाकीज़गी अख्तियार करनी है। अल्लाह ताला के कामों में मसलियत और हिकमत पोशीदा है। लोगों के साथ आसानी का मामला करना है। हसूल इल्म के रास्ते में सब्र इख्तियार करना है। नेक अमाल रहमत का बायस है। और पारे का थीम पिछली नशिस्त पे बैठने को कबूल करना, ये मेरे समेत हर उसके लिए है जो ऑलरेडी ये कोर्सेज कर चुके हैं, लेकिन मजीद इल्म सीखने के लिए उस्ताद से तालिब इल्म बनने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों से फिर अल्लाह जो खैर लेता है ना, वो सिमटती नहीं है। ये मेरा तजुर्बा है। अल्लाह ताला आप सबको नसीब करे। अब आखिरी किस्सा है सूरत कहफ का, फितना इकतदार, हुक्मरानी का फितना। आइए देखते हैं 83 से 101 रुकू नंबर 2 है पारे का। अल्लाह का वादा सच्चा है। वयसलून कानजिल करनैन, आपसे जुलकरनैन का वाक़या ये लोग दरियाफ्त करते हैं। आप कह दीजिए कि मैं इनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने इसे ज़मीन में कुव्वत अता फरमाई थी और इसे हर चीज़ के सामान भी अनायत कर दिए थे। वो एक राह के पीछे लगा, यानी ही यूज्ड द मीन्स, अपने को असबाब इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गरूब होता हुआ पाया। ये कौन सी जगह होगी भला? नॉर्वे। मुझे पता था आप लोग यही कहेंगे। और इस चश्मे के पास एक कौम को पाया। हमने फरमाया कि ज़ुल्करनैन, या तो इन्हें तकलीफ़ पहुँचाए या इनके बारे में तू कोई बेहतर रविश अख्तियार करे। उसने कहा, जो जुल्म करेगा इसे तो हम भी अब सजा देंगे। फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और वो इसे सख्त अज़ाब देगा। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमाल करे, इसके लिए तो बदले में भलाई है और हम इसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देंगे। फिर वो एक राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुँचा तो इसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि इनके लिए हमने इससे और कोई ओट नहीं बनाई। वाकया ऐसा ही है। हमने इसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। वो फिर एक सफ़र के सामान में लगा, यहाँ तक कि जब वो दो दीवारों के दरमियान पहुँचा, इन दोनों के परे इसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी न थी। उन्होंने कहा है, ज़ुल्करनैन, जाजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें? उसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत पर्दा बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब इन दो पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज चलाओ, यहाँ तक कि लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया। तो फरमाया, मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दो। बस ना तो इनमें इसके दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत थी और न इसमें कोई सुराख वो कर सकते थे। कहा, ये सब मेरे रब की मेहरबानी है। देखिए कितने लो प्रोफाइल पे हैं, डाउन टू अर्थ लोग ऐसे ही होते हैं। जो कुछ भी मिल जाए वो अपने आप को आजिज़ समझते हैं और रब पे डाल देते हैं सारी नेमतों को। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है और हक भी है। इस दिन हम इन्हें आपस में एक दूसरे में गुटमुट होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा। बस सब को इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। उस दिन हम जहन्नम को भी कुफार के सामने ला खड़ा कर देंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं। देखिए, यहाँ काफिर की एक और पहचान, एक और किस्म। हर वो शख्स भी कुफर पे जो अल्लाह की याद से गाफिल है और अमरे हक सुनकर भी नहीं सुन सकते थे। क्या पता चला? ज़ुल्करनैन का किस्सा। कौन थे ज़ुल्करनैन? क्वेश्चन एक। हाफिज इब्ने हजर ने हजरत अली से एक कौल नकल किया कि ज़ुल्करनैन ना तो नबी थे और ना फरिश्ते, बल्कि वो एक इंसान थे। वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे और अल्लाह ने भी इनको महबूब रखा। ये तफसीर इब्ने जरीर और तबरानी की रिवायत है। आपके मेरे लिए इसमें अमल के नुक्ते पहले नोट कीजिए कि अल्लाह की रज़ा को पाने वाले अमल करने हैं, फसाद नहीं फैलाना। यकीन रखना है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। लोगों से हुस्ने सलूक करना है, नेक अमल करना है, अल्लाह के जिक्र से मुंह नहीं फेरना और लोगों की मुश्किलात को दूर करना है। लेकिन इस किस्से को सहाबा कराम के मौजू के साथ रिलेट करते वक्त इस वक्त हमें चंद बातें करने की ज़रूरत है हुक्मरान सहाबा के बारे में। ज़ुल्करनैन की सूरत में एक आदिल और इंसान दोस्त और खिदमत करने वाला हुक्मरान दिखा। नबी के सहाबा भी ऐसे ही थे। ये एक पूरा टॉपिक है, ये एक ऐसा बड़ा मौजू है कि जिससे आज के हुक्मरान भी गाफिल हैं और आज की रियाया भी गाफिल है। याद रखिए, जहाँ के बड़े देने वाले होते हैं ना, खिदमत करने वाले होते हैं, जुर्रत और शुजात वाले होते हैं, जोश और वलवले के पैकर होते हैं, अदल और इंसाफ करने वाले होते हैं, वहाँ की आवाम भी बड़ी जुर्रत वाली होती है। जिन बड़ों को इल्म और अदल का शौक़ हो, अमन और सलामती के वो लोग हों, सहाबे कराम का ये एक अजीब व गरीब सा रूप है। इसको अगर छेड़ देती तो फिर तो बात पूरी नहीं होनी थी। लेकिन आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक से शुरू करके उमर, उस्मान, अली, इन चार के हालात ज़िंदगी तो पहले चार पारों में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक इन लामों में उन लोगों को नहीं देखा कि जिनको अल्लाह ने मिस्र की फतह के लिए चुना, और इसमें आपने वो नाम नहीं सुने कि जिनको अल्लाह ने रोम और फारस और इधर उधर के नामों पे रखा। एक लंबी लिस्ट ऐसे सहाबा की कि जिनको अपने अपने दौर में हुक्मरानी का मौका मिला। मसलन आप देखिए कि अमर बिन अलास मिस्र के वाली बने थे, साद बिन अबी वक्कास ईरान के वाली बने थे, इसी तरह अमीरुल मोमिनीन माविया बिन अबी सुफियान को लकब मिला हसन बिन अली। फिर इसी तरह से आप देखिए साद बिन अबी वक्कास ईरान के नाम के साथ, मुगीरा बिन शोबा वालिये कूफा और बहरेन थे, अबू मूसा लशरी को यमन का वाली बनाया गया, वाली ऐसे जैसे आज का हुक्मरान। अब्दुल्ला बिन अब्बास बसरा के, मास बिन जबल यमन के, सईद बिन आमिर जो थे खम्स के, और उकबा बिन आमिर मिस्र के वाली थे, और अब्दुल्ला बिन आमिर वालिये बसरा बने। एक लंबी लिस्ट है, दो तीन नाम और लिख लीजिए, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वालिये हिजाज, उमर बिन साद वालिये खम्स, फिर अबू हुरैरा को वालिये मदीना और बहरेन बनने का मौका मिला, सुमामा बिन उसाल वालिये नजद थे, और सहल बिन हुनैफ वालिये कूफा थे, और इसी तरह सलमान फारसी। आप सिर्फ एक किताब ले लें, मैं आपको एक नाम दे देती हूँ, हुक्मरान साहब भाई उसका नाम है। इतने खूबसूरत वाकयात आपको मिलेंगे, और अपने बच्चों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनके सर फख्र से बुलंद हों और वो ब्लेस्ड फील करें कि मुसलमान हुक्मरान सिर्फ लड़ते भगड़ते और उनके ऊपर इल्ज़ाम ही नहीं लगते। उमर की कमर के ऊपर घट्टे पड़ चुके थे, गरीब और बेवाओं औरतों के लिए आटे और राशन की बोरियां उठा उठा के, और क्या बताऊं। उमर की तो बड़ी कहानी आपने भी सुनी होगी ना। तो ज़ुल्करनैन का किरदार सहाबा की सूरत में आपको मिलेगा, हुक्मरान सहाबा के टॉपिक में। अल्लाह करे कि हमारे वक्त में बरकत हो जाए, और आज किसी को वोट लेने या किसी पार्टी का टिकट लेकर खड़े होने की इजाज़त ना दी जाए जब तक वो हुक्मरानों का ये रूप ना पढ़ ले। अल्लाह हमारी उम्मत को पढ़ने लिखने का शौक़ लगा दे। आगे चलते हैं जी, आखिरी आयतें हैं रुकू नंबर 3, 102, 110 तक। शिर्क छोड़कर तौहीद इख्तियार करना। अफहसिबल्लज़ीना कफरू, क्या काफिर ये ख्याल किए बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लेंगे। सुनो, हमने तो इन कुफार की मेहमानी के लिए जहन्नुम को तैयार कर रखा है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है। वो हैं जिनकी दुनिया की ज़िंदगी की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं और वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। देखिए, जो बुरे काम कर रहा है ना, उसको तो उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ मार पड़नी है आगे। अच्छे काम करके मार पड़ गई तो क्या होगा। अल्लाह हमें कभी ऐसे अमल करने की तौफीक ना दें कि जिसके बाद फिर हम जहन्नमी बने। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और इसकी मुलाकात से कुफर किया, इसलिए इनके आमाल गारित हो गए। बस क़यामत के दिन हम इनका कोई वज़न कायम ना करेंगे। हाल ये है कि इनका बदला जहन्नुम है, क्योंकि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए फिरदौस के बागात की मेहमानी है, जहाँ वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी इनका इरादा ना होगा। कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो वो भी मेरे रब की बातों के ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। गो हम इस जैसा और भी इसकी मदद के लिए ले आए। आप कह दीजिए मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। ये कौन कह रहा है? नफ्स किसके बारे में कह रहे हैं? तो कोई गुस्ताखी हो रही है। आप देखिए कि बार बार भी अबदी ही लैल मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक्सा फिर अल्हम्दुलिल्लाह लजी अनज़ल अला अब्दी हिल किताब। तो नबी के अब्द होने में नबी की इज्जत है ना कि कुछ और। हाँ मेरी जानब वही की जाती है। वही का खुलासा क्या है कि सिर्फ एक ही माबूत है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो इसे चाहिए कि नेक आमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना करे। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे सूरत पूरी होती है। आयत 101 से 106 देखें तो जहन्नुम में ले जाने वाले कुछ आमाल हैं। नंबर एक, अल्लाह की याद से गाफिल होना, कुफ्र और शिर्क का इर्तिकाब करना, अपने गुनाह को अच्छा समझना, बड़ा बनना, अच्छे कामों का अजर दुनिया में मिलने की उम्मीद रखना, आखरत के लिए संजीदा ना होना, अल्लाह हमें बचा दे। फिर जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान इतना ही फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है दर्जे के एतबार से। फिरदौस आला जन्नत है, इसी से जन्नत की चारों नहरें बहती हैं और इसके ऊपर अर्श है। लिहाजा जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिरदौस मांगो। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 2531। तो हम भी क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नसलुका जन्नतुल फिरदौस। और बग़ैर हिसाब भी कह लें अपने लिए। अमल के क्या नुक्ते हैं? ईमान ला कर नेक अमल करना है, अल्लाह ताला के सिवा किसी को कारसाज़ नहीं बनाना, कोशिशों को सीधे रास्ते से भटकने नहीं देना, रसूलों का मजाक नहीं उड़ाना, आखरत पर दुनिया को तरजीह नहीं देना और रब की मुलाकात की उम्मीद रखना है। आइए सूरत के खात्मे पे अपना मुहासबा करते हैं। क्या मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहती हूँ? क्या मैं इल्म पाने के लिए जिद्दोजहद करती हूँ? क्या मुझे अल्लाह से मिलने की आरज़ू है? अल्लाह आपसे राज़ी हो।